الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد الأمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. خواتین و حضرات، اس وقت پوری دنیا پر ایک بلائے بے درما کا تسلط ہے. اس دنیا کا کوئی گوشہ ایسا نہیں جو اس سے متاثر نہ ہوا ہو. دنیا کی تمام تر ترقی، تمام تر علو، تمام تر برتری ایک معمولی جرثومے کے سامنے بالکل عاجزی اور درماندگی کی تصویر بن گئی ہے. یہ موقع ہے کہ جس میں ایک طرف یہ بتایا جا رہا ہے کہ یہ کیا چیز ہے، اس سے بیماری کیسے پھیلتی ہے، اس میں کیا احتیاطی تدابیر اختیار کرنی چاہیے، اگر اس کا کوئی علاج تلاش کرنا ہے تو وہ کس طرح تلاش کیا جائے گا. یہ سب وہ چیزیں ہیں کہ جو اپنی ذات میں بہت ضروری ہیں، لیکن ان کے ساتھ مسلمان کی حیثیت سے یہ سمجھنا بھی بہت ضروری ہے کہ اس عالم کا پروردگار اس کو کس طرح سے چلا رہا ہے، اس میں مصیبتیں اور تکلیفیں کس طرح آتی ہیں، اس میں خیر و شر کس طرح نمودار ہوتے ہیں، اس کے نشیب و فراز کیا ہیں، اس میں قوموں کے لیے کیا قانون ہے، اس میں عالمی سطح پر کیسے گرفت ہوتی ہے. اللہ کی کتاب قرآن مجید ہمارے پاس موجود ہے. یہ کتاب، یہی کہا جا سکتا ہے کہ این کتاب از آسمان دیگر است، یہ ان سب چیزوں کے بارے میں اللہ کے سنن اور اللہ کے طریقے بیان کرتی ہے. میں اس مختصر نشست میں یہ کوشش کروں گا کہ ان سب چیزوں کا ایک اجمالی تعارف کراؤں جو اس باب میں قرآن مجید نے بیان فرمائی ہے. سب سے پہلی چیز جو ہم میں سے ہر شخص کو سمجھنی چاہیے وہ یہ ہے کہ یہ دنیا، ہماری دنیا، ہم انسانوں کی دنیا، یہ اللہ کی کس اسکیم پر کام کر رہی ہے. ہم میں سے ہر شخص جانتا ہے کہ یہاں سب سے بڑا مسئلہ ہی جو انسان کو اللہ تعالیٰ کے حوالے سے درپیش ہوتا ہے وہ دنیا میں خیر و شر کا وجود ہے. یعنی ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ پورا عالم جو ہمارے اوپر ہے، یہ قاعدے ضابطے بلکہ ریاضیاتی سچائیوں کے ساتھ اپنا نظم چلا رہا ہے، لیکن یہ ہم انسانوں کی دنیا اپنے اندر بہت نشیب و فراز رکھتی ہے. یہاں بڑے بڑے شر نمودار ہوتے ہیں، یہاں بڑی تباہیاں آتی ہیں، زلزلے آتے ہیں، طوفان آتے ہیں، بستیاں کی بستیاں تباہ ہو جاتی ہیں، وبائیں پھیلتی ہیں. آج سے کم و بیش 100 برس پہلے ہم میں سے ہر شخص اس بات سے واقف ہے کہ جس کو ہم اسپینش فلو کہتے ہیں، یعنی ایک بہت بڑی وبا پھیل گئی جس میں بتایا جاتا ہے کہ کروڑوں کی تعداد میں لوگ دنیا سے رخصت ہو گئے. یہی صورتحال زیادہ عرصہ نہیں گزرا، پہلی اور دوسری جنگ عظیم میں پیش آئی، اس میں بھی کروڑوں عورتیں، مرد، بچے سب اس جنگ کی نظر ہو کر رہ گئے. یہ سب جو کچھ اس دنیا میں ہوتا ہے، اس کائنات کا پروردگار ایک عادل ہستی ہے تو وہ یہ سب کیسے گوارا کرتا ہے؟ قرآن مجید نے اس کے لیے جگہ جگہ اس حقیقت کو واضح کیا ہے کہ یہ دنیا جس اسکیم پر بنائی گئی ہے، انسانوں کی دنیا، اس کو سمجھ لینا چاہیے. یہ دنیا عدل کے اصول پر نہیں بنائی گئی. یعنی ایسا نہیں ہے کہ اس دنیا کے پروردگار نے एक आइडियल या मिसाली दुनिया तख्लीक करने का फैसला किया और यहाँ पर कामिल अदल का जहूर हो गया जो उस परवरदिगार से मतवक्का होना चाहिए। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में और कुरान मजीद से पहले तमाम सहीफों में अपने पैगंबरों के ज़रिए से ये हकीकत वाज़ह की कि वो मिसाली दुनिया जो तुम अल्लाह के हवाले से तसव्वुर करते हो वो मौत के बाद वजूद में आएगी, वो तुम्हारा मुस्तकबिल है, वो तुम्हारी मंजिल है। मैंने उसी दुनिया को असलन बनाना चाहा है लेकिन उसमें कौन आबाद होंगे? मैं इस दुनिया में, ये जो तुम्हारी दुनिया है, एक आर्जी नज़म कायम करके अपनी उस दुनिया के लिए लोगों का इंतखाब करना चाहता हूँ। मैं ये चाहता हूँ कि मैं इस्तेहकाक की बुनियाद पर, अमल की बुनियाद पर इंसान के अपने किरदार और उसकी सीरत की बुनियाद के ऊपर उस दुनिया के लिए लोगों का इंतखाब करूँ। चुनाचे ये नागुज़ीर हुआ कि ये आर्जी दुनिया ये अदल के उसूल पर न बनाई जाए, तो फिर वो क्या उसूल है जिस पर इसको बनाया जाएगा? तो इरशाद फरमाया है कि खलकल मौतबल हयातल यबलुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला। सूरह मुल्क में ये बुनियादी कायदा बयान कर दिया कि ये मौत व हयात का कारखाना, यानी अगर ये दुनिया मिसाली होती तो फिर इसमें ऐशे दवाम होता, हयात दायमी होती, हमेशा की ज़िंदगी होती। ये दुनिया चूंकि बनाई ही एक आर्जी मकसद के लिए है जिसके नताएज अबदी तौर पर निकलने हैं, तो इसलिए ये मौत व हयात का कारखाना है, यानी इसमें ज़िंदगी के पीछे मौत लगी हुई है। ये क्यों बनाया गया है? खलकल मौत वल हयात अल यबलुवकुम अय्युकुम अहसन व अमला, इसलिए बनाया गया है कि इस कायनात के खालिक ने ये फैसला किया कि वो अपनी उस मिसाली दुनिया के लिए जो अबदी होगी, हमेशा रहेगी, जिसमें इंसान को भी हयात अबदी हासिल हो जाएगी, उस दुनिया के लिए लोगों का इंतखाब करे, उसमें बसाने के लिए, उसको आबाद करने के लिए। इसकी बुनियाद क्या है, यानी क्या देखना है? तो यहाँ तो उसको इस तरह ताबीर किया कि अय्युकुम अहसनु अमला, कौन बेहतरीन अमल करता है। दूसरी जगहों पर बड़ी जामे ताबीर इख्तियार की कि वो बेहतरीन अमल कैसे वजूद में आता है। वो तज़किये से वजूद में आता है, यानी इंसान जब अपने वजूद को पाकीज़ा बनाता है, अपनी इनफरादी और इज्तमाही ज़िंदगी को पाकीज़ा बनाता है, क़ुरान की इस्तलाह में ये तज़किया है, तो वो नफूस ज़किया, वो पाकीज़ा नफूस, वो पाकीज़ा हस्तियाँ, वो पाकीज़ा शख्सियात जो अपने बदन को भी पाकीज़ा रखें, जो अपने खुरनोश को भी पाकीज़ा रखें, जो अपने अखलाक को भी आखिरी दर्जे में पाकीज़ा रखें, वो उस दुनिया के लिए मुंतखब की जाएगी। तो जब ये दुनिया इस मकसद के लिए बनी है तो ये अदल के उसूल पर नहीं बनी, ये इम्तहान के उसूल पर बनी, आजमाइश के उसूल पर बनी है। चुनाचे एक दूसरी जगह फरमाया है कि कुल्लु नफ्सिन ज़ायकतुल मौत, यहाँ हर शख्स को मौत का मज़ा चखना है। मौत जिंदगी का यहाँ ताकुब कर रही है। नबलुकुम बिश्शर वल खैर फितनतन व इलैना तुरजऊन, यानी हम तुमको आजमा रहे हैं, मुख्तलिफ मराहिल से गुजार रहे हैं, अच्छाई और बुराई से, खैर से, शर से। क्यों? फितनतन, परखने के लिए। व इलैना तुरजऊन, एक दिन हमारी ही तरफ लौटाए जाओगे। तो ये इस दुनिया में इसके खालिक की स्कीम है, इसके तहत ये दुनिया चलाई जा रही है, ये दुनिया काम कर रही है। इसका लाजमी नतीजा क्या है? वो दो चीज़ें हैं। एक ये कि जो इंसान यहाँ पैदा किए गए हैं उनको इख्तियार दिया गया है एक दायरे में, यानी ये कोई मुतलक इख्तियार नहीं है, एक दायरे में इख्तियार दिया गया है वो किस दायरे में है, उसी दायरे में जिसमें उनका इम्तहान होना है। ये देखना है कि उनके अखलाकी वजूद में वो कितनी पाकीज़गी पैदा करने में कामयाब हो। तो उन्हें इख्तियार दिया गया है, वो इस इख्तियार का इस्तेमाल करेंगे। जब इख्तियार का इस्तेमाल करेंगे तो उससे शर भी पैदा होगा, उससे खैर भी पैदा होगा। वो सही इस्तेमाल करेंगे तो खैर पैदा होगा, यानी वो पाकीज़ा नफ्स होंगे, वो चीज़ों को खुदा के बताए हुए तरीके के मुताबिक बरतेंगे, वो अपने अमल को साले बनाएंगे, तो इससे खैर पैदा होगा। और अगर वो गलत रवि इख्तियार करेंगे तो उससे फसाद पैदा होगा, फितना पैदा होगा, शर पैदा होगा। तो एक तरफ ये मुसीबत हो गई, यानी चूंकि इंसान को इख्तियार दिया गया है तो उसके सुए इस्तेमाल से इंसानों के हाथों का शर पैदा होता है। इसी को बयान किया है कि मा असाबकुम मिन मुसीबा फबिमा कसबत एदिन नास, यानी ये जो फिर तकलीफें मुसीबतें आती हैं, ये जंग हो गई, ये तूफान आ गया, इसके नतीजे में कत्लो गारत का एक बाजार गर्म हो गया। हमने खुद अपने मुल्क में 10-20 साल ऐसे देखे कि जिसमें ना कोई मस्जिद महफूज थी, ना कोई बाजार महफूज था, ना कोई दरसगाह महफूज थी, कत्लो गारत का एक बाजार गर्म हुआ और मजहब के नाम पर हुआ, आला अकदार के नाम पर हुआ। उससे बहुत पहले हमने जंगें देखी, यानी इंसान बड़ी ताकतें बड़ी कुव्वतें कहीं शाम पर पिल पड़ी, कहीं इराक पर पिल पड़ी, कहीं अफगानिस्तान को ताख्तो ताराज कर दिया। ऐसे ही कौमों के अंदरूनी नज्म में ऐसे फसाद पैदा होते रहे। तो फसादात ये सब वो है जिसको कुरान मजीद ने ताबीर किया कि फबिमा कसबत ऐदी को, यानी ये तुम्हारे हाथों की कमाई है, तुमने खुद इनको पैदा किया है, तुम्हारी ये स्कीमें, तुम्हारा इक्तदार, तुम्हारी ताकत तुम्हें ऐसा बदमस्त कर देती है कि उसका लाजमी नतीजा फसाद की सूरत में निकलता है। तो ये इंसान को जो इख्तियार दिया गया है उसके सुए इस्तेमाल से पैदा होने वाला शर है। दूसरी चीज़ क्या है, जलजले, तूफान, सुनामी आ गया, बस्तियाँ की बस्तियाँ बह गई, वबा फूट पड़ी। अब ये जो वबाएँ हैं, जैसे मैंने अर्ज़ किया कि स्पेनिश फ्लू तो अभी पिछली सदी की बात है, यही 1918 और 20 के दरमियान की चीज़ है। इसके अलावा और बहुत सी वबाएँ हैं जो दुनिया की तारीख में अपने असरात छोड़ गई, हिंदुस्तान में, यूरोप में, बहुत बड़े पैमाने पर आग लग गई, पूरे पूरे शहर जल गए। और इसमें ये नहीं है कि किसी ख़ास ज़माने में ये ज़रूर आएगी, सैयदना उमर जैसी हस्ती के दौर में ये मालूम है कि एक बड़ी ताऊन की वबा फैल गई। सैयदना उमर रज़ी अल्लाह अन्हु के ज़माने में कहत पड़ गया। एक बड़े कहत का ज़िक्र हम कुरान मजीद की सूरह यूसुफ में देखते हैं। तो ये जो चीज़ें हैं कि जिनमें इंसान बदाहिर काम करता नज़र नहीं आता, यानी जब हम जंग को देखते हैं, जिदाल को देखते हैं, इंसान के हाथ से पैदा होने वाले जुल्म को देखते हैं, तो वो एक नौइयत का शर है या एक नौइयत की मुसीबत है जो इंसान अपने हाथों से ले आता है। एक दूसरा पहलू ये है कि इस कायनात के नज़मी में अल्लाह ताला ने ये गुंजाइश रखती है कि जिसमें ये सब चीज़ें पैदा हो जाती हैं, तूफ़ान, जलजले, कहत, इस तरह की जितनी चीज़ें भी यहाँ रखी गई हैं, तो ये इंसान के इस मजमूई नज़म को बाज़ औक़ात बिल्कुल दरहम बरहम करके रख देती है। कुरान मजीद ने जगह जगह ये तवज्जो दिलाई है कि इससे क्या मकसूद होता है। तो जैसे कि मैंने अर्ज़ किया कि दुनिया की ज़िंदगी उसूल के लिहाज से जिस स्कीम पर बनी है वो इम्तहान की स्कीम है। ये इम्तहान दोनों तरीक़ों से होता है, फ़र्द का भी, कौमों का भी, जमातों का भी, आलमी सतह पर पूरी इंसानियत का भी। यानी कभी इसमें अल्लाह की नेमतें इंसानों को इस बड़े पैमाने पे दी जाती हैं, आप अफराद को देख लीजिए, आप कौमों को देख लीजिए, कि इंसान हैरान रह जाता है। ये नेमतें हम में से हर शख्स को इनफरादी तौर पर भी मिलती हैं, तो ये भी इम्तहान है, यानी ये किसी इस्तेहकाक के नतीजे में नहीं मिलती। तो क्या इम्तहान है? वो शुक्र का इम्तहान है। चुनाचे इरशाद फरमाया है कि हमने इंसान को इस दुनिया में भेजा ही इस तरीके से है कि उसमें ये दोनों चीज़ें पैदा होती रहेंगी, यानी नेमतों की फरावानी होगी, फिर मुसीबतों और तूफानों की ताकत होगी। दोनों सूरतों में हम क्या देखते हैं? इम्मा शाकिर व इम्मा कफूर। देखते हैं कि नेमतें पाकर क्या वो शुक्रगुजार होता है और मुसीबतों में क्या सब्र करता है, अल्लाह के साथ अपने ताल्लुक की याद दहानी हासिल करता है, क्या उस जगह खड़ा होता है कि जब मुसीबत आती है तो वो कह उठते हैं कि इन्ना लिल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन, हम अल्लाह ही के लिए हैं और अल्लाह ही की तरफ लौटने वाले हैं। तो इंसान की आजमाइश, इंसान का इम्तहान, ये तो हर वक्त जारी है। यानी जिस वक्त हम इत्मीनान की नींद सो रहे होते हैं, जब हर दूसरे दिन हमें अच्छी खबर मिल रही होती है, जब फ़र्द की हैसियत से या जमात की हैसियत से या कौम की हैसियत से या इंसानियत के एतबार से नेमतों पर नेमतें हमें मयस्सर हो रही होती हैं, वो भी इम्तहान होता है, किसी इस्तेहकाक का नतीजा नहीं होता। उस वक्त अल्लाह ताला क्या देख रहे हैं? वो ये देख रहे हैं कि क्या मेरे बंदे इन नेमतों को अपनी कारगुजारी का नतीजा समझ बैठते हैं, अपने किसी अमल का नतीजा समझ बैठते हैं, या इसको मेरी इनायत, मेरा करम समझकर मेरे शुक्रगुजार बनते हैं। यानी उनके यहाँ क्या जज्बा पैदा होता है ये नेमतें पाने के बाद, तो वहाँ ये देखते हैं। फिर मुसीबत, तकलीफ़ और ये सब जिन चीज़ों का मैंने जिक्र किया, ख्वाह वो इंसानों के हाथ की कमाई हो या इस दुनिया के नज़्म को जिस तरह कायम किया गया है उसके लिहाज से कोई जलजला, कोई तूफ़ान इंसानों को झंझोड़ कर रख दे, दोनों सूरतों में वो ये देखते हैं कि अब इस मुसीबत में क्या ये सब्र करते हैं, मेरी तरफ रजू करते हैं। तो चुनाचे फरमाया है वहाँ पर, जिस तरह के मैंने अभी आपको हवाला दिया, कि नबलूकुम बिश्शर वल खैर फितनतन व इलैना तुरजऊन। यानी वो असल चीज़ वो होती है कि हमारी तरफ लौटने के तसव्वुर तरफ लपकते हैं, जाते हैं, उसको कबूल करते हैं। दूसरे लफ्ज़ों में यूँ कहिए कि सब्र और शुक्र का ये जो इम्तहान बरपा है और हमा वक्त बरपा है, ये सब्र और शुक्र का इम्तहान दर हकीकत अल्लाह ताला के उस इंतखाब की तमहीद है जिसके तहत वो देख रहे हैं कि मेरे आखिरी दर्जे में शुक्रगुजार बंदे हैं जिनसे मैं अपने फिरदौस को आबाद करूँगा, मेरी इस दुनिया में आखिरी दर्जे के साबिर और शाकिर बंदे हैं जिनसे मैं अपने फिरदौस की आबादी का अहतमाम करूँगा। ये वो इंतखाब कर रहे हैं, लोगों को चुन रहे हैं। तो ये तो अमूमी कानून है जो हमा वक्त जारी है, यानी हमारे हर अमल, हमारे हर इकदाम, हमारे हर तसव्वुर के पीछे यही चीज़ रहनी चाहिए कि ये दुनिया अदालत के उसूल पर नहीं बनाई गई, ये दुनिया इम्तहान के, आजमाइश के उसूल पर बनाई गई। इसके बाद जो दूसरी बहुत बड़ी हकीकत कुरान मजीद ने वाज़े की है वो ये है कि दुनिया में जितनी कौमें हैं, यानी एक तो अफराद हैं उनके ऊपर भी अच्छे बुरे हालात आते रहते हैं, लेकिन दुनिया में जितनी कौमें हैं उनको अल्लाह ताला एक तरतीब के साथ दुनिया के स्टेज पर आने का मौका देते हैं। चुनाचे कुरान मजीद ने यह फरमाया है कि इम मिन करियत लिल्ला नहनो मुहलिकूहा कबला यौमिल कयामा औ मुअज्जिबूहा अज़ाबन शदीदा काना ज़ालिक फिल किताब मस्तूर। कि इस दुनिया में जितनी कौमें भी आ रही हैं, पैदा हो रही हैं, एक तरतीब के साथ हम उनको दुनिया के स्टेज पर लाते हैं और दुनिया के स्टेज पर लाने के बाद कयामत तक हम उनमें से बाज को हलाकत तक पहुंचा देते हैं, बाज पर बड़ा शदीद अजाब नाज़िल कर देते हैं। तो ये कौमों का एक कमल है, एक सुन्नत इलाही है, एक अल्लाह का तरीका है जो कौमों से मुतल्लिक जारी है। चुनांचे हम पीछे पलट के देखते हैं तो ये मालूम होता है कि दुनिया के स्टेज के ऊपर क्या क्या कौमें नमूदार नहीं हुई। ये रोमन एम्पायर कायम हो गया, ये सासानी सल्तनत कायम हो गई, ये मुसलमानों का एक बड़ा एम्पायर कायम हुआ, ये उससे पहले बाबिल की एक बहुत बड़ी सल्तनत थी। तो दुनिया के अंदर इसी तरीके से तिलकल अय्यामन उदाविलुहा बैनन्नास, अल्लाह का एक कानून है जिसमें कौमें नमूदार होती हैं और फिर आहिस्ता आहिस्ता हलाकत की नज़र हो जाती है। अल्लाह ताला ये फरमाते हैं कि ये हलाकत जो कौमों की होती है ये एक तदरीज के साथ होती है, यानी ग्रेजुअली एक कौम स्टेज पे नमूदार होती है और आहिस्ता आहिस्ता। लेकिन कैसे होती है ये हलाकत? तो फरमाया है कि तुम अपने कौमी किरदार के लिहाज से अगर मुस्तहकम खड़े रहते हो तो अल्लाह भी अपना फैसला नहीं तब्दील करते, मोहलत मिली रहती है। लेकिन अगर अपने बातिन में वो तब्दीली ले आते हो कि जिसके बाद न इल्म बाकी रहता है न अखलाक बाकी रहता है, तो फिर अल्लाह भी अपना तरीका तब्दील करते और कौमों को हलाकत के हवाले कर देते। मैंने अर्ज़ किया कि यह हलाकत कुरान मजीद ने बताया है कि ये एक तदरीज के साथ होती है। यही दुनिया में हमारा मुशाहिदा भी है, ऐसा नहीं होता कि एक दिन यक बया के कौम दुनिया से गायब हो जाए। लेकिन अल्लाह ताला ने जब नबूवत का सिलसिला जारी रखा हुआ था उस वक्त सूरत हाल ये नहीं थी। उस वक्त ये था कि अल्लाह ताला किसी कौम की तरफ अपना रसूल भेजते थे, और जब किसी कौम की तरफ रसूल आ जाता था तो वो आके कौमों को उनकी सरकशी, उनके तमर्रुद, अल्लाह ताला के मुकाबले में उनके इस्तकबार पर उनको मुतनब्बे करता था। यानी जब रसूल आता है तो जाहिर है कि उन कौमों के अंदर अखलाकी लिहाज से, सीरत के लिहाज से, किरदार के लिहाज से जो खराबियां हैं वो खराबियां तमर्रुद और सरकशी की सूरत इख्तियार कर चुकी होती। तो अल्लाह ने उन कौमों का इंतखाब किया और फिर उनकी तरफ अपने रसूल भेजे। उन रसूलों के आने के बाद जब अल्लाह की हुज्जत पूरी हो गई, यानी हर लिहाज से हक वाज़े कर दिया गया, उन्हें बताया गया कि तुम क्या खबास्ते कर रहे हो, क्या जुल्म लोगों पर तोड़ रहे हो, क्या सितम कर रहे हो, अल्लाह के किन हुदूद की खिलाफवर्जी कर रहे हो, इससे बाज आ जाओ। बार बार उनको तंबीह की जाती है और ये बताया जाता है कि तुम्हारे अंदर अल्लाह का रसूल मौजूद है, अल्लाह के रसूल से हिदायत हासिल करो। ये उन्हें बार बार तंबीह की जाती है लेकिन वो इसको सुनने के लिए तैयार नहीं होते। तो फिर एक वक्त ऐसा आ जाता है कि आम तौर पर तो कौमें तदरीजी तौर पर हलाकत में मुब्तला होती है, लेकिन इस तरह की कौमों की तरफ अल्लाह का अजाब नाजिल हो जाता है, यानी उनको ज़मीन से मिटा दिया जाता है। इन कौमों की दास्तान कुरान मजीद ने जगह जगह सुनाई है। यानी एक तो उसूल बयान कर दिया कि हर करिए हर बस्ती के साथ ये मामला हम कर रहे हैं कि इल्ला नहनु मुहलिकुहा कबला यौमिल क़यामा औ मुअज़्ज़िबुहा, यानी या तो वो इसी तरह तदरीजी तौर पर हलाकत की नज़र हो जाएंगी और या फिर मुअज़्ज़िबुहा अज़ाबन शदीदा। और फरमाया काना ज़ालिका फ़िल किताब मस्तूरा, ये हमारे कानून में, हमारे नविश्ते में लिख दिया गया है कि ऐसे ही हो। तो जिस तरह मैंने अर्ज़ किया कि बाकी कौमों के साथ एक तदरीजी हलाकत का ज़हूर होता है, जिन कौमों की तरफ रसूल भेजे गए उन पर इतमाम हुज्जत के बाद अल्लाह का अजाब आ जाता है। उस अजाब के लिए अल्लाह ताला ने ये उसूल बयान किया है कि एक तो मा कुन्ना मुअज़्ज़िबीन हत्ता नबअसा रसूला, जब तक हम किसी कौम के अंदर किसी रसूल को मबूस नहीं कर लेते हम वो अजाब नाजिल नहीं करते। दूसरे ये कि वो अजाब सिर्फ मुनकरीन पर आता है, यानी जब अल्लाह के पैगंबर हुज्जत पूरी कर देते हैं, हक को हर लिहाज से वाज़े कर देते हैं, तो उसके बाद अल्लाह ताला गिरफ्त करते हैं, लेकिन वो गिरफ्त नेकोकारों पर नहीं होती। उससे पहले कि ये गिरफ्त की जाए दोनों को अल्लाह ताला अलग अलग करते हैं। कुरान मजीद कहता है कि ये तथहीर होती है, ये तमहीस होती है, यानी मुनकरीन को और मोमिनीन को, सच्चे तरीके से पैगंबरों की पैरवी करने वालों को और उनके मुकाबले में तमर्रुद और सरकशी इख्तियार करने वालों को अल्लाह ताला पहले अलग अलग करते हैं और फिर उसके बाद उन लोगों के ऊपर वो अजाब आता है कि जो खुदा के मुकाबले में खड़े हो जाते हैं। उसकी सबसे नुमायां मिसाल जो पहली मर्तबा तारीख में सामने आई वो सैयदना नूह अलैहिस्सलाम का वाकया है। ये मालूम है कि जब तक सच्चे अहले ईमान को कश्ती में सवार नहीं कर लिया गया उस वक्त तक तूफान नहीं उबला। यही सूरत हाल सबके साथ की जाती है, यानी एक वक्त आ जाता है जिसके बाद अल्लाह ताला अपना फैसला सुना देते हैं। कुरान मजीद में ये दास्तान कि किन किन कौमों की तरफ अल्लाह के रसूल आए और वो किस तरह मिटा दी गई बड़ी तफसीलात के साथ बयान हुई, लेकिन एक सूरा कुरान की ऐसी है कि जिसमें गोया आप ये कह लीजिए कि दरिया बकूजा, यानी उसमें नहायती इख्तसार के साथ बहुत खूबसूरत उसलूब में ये सारी दास्तान जमा कर दी गई है। ये कुरान मजीद की सूरह कमर है। इस वक्त ये मौका तो नहीं है कि पूरी सूरह पढ़ी जाए और पूरी सूरह का फिर तर्जुमा आपके सामने रखा जाए। जहाँ से ये वाक़यात शुरू होते हैं मैं सिर्फ अपने तर्जुमे से उनकी तरफ मतवज्जे कर रहा हूँ। इरशाद फरमाया है, इनसे पहले नूह की कौम ने भी इसी तरह जुटलाया सो हमारे बंदों को उन्होंने झूठा करार दिया और कहा कि ये दीवाना है और वो बुरी तरह झिड़का गया। आखिर उसने अपने परवरदिगार से फरियाद की कि मैं मगलूब हो चुका, अब तू इनसे बदला ले। तब हमने मूसलाधार बारिश से आसमान के दरवाजे खोल दिए और जमीन को इस तरह फाड़ा कि वो चश्मे ही चश्मे हो गई। फिर जमीन व आसमान का पानी उस निशान पर बाहम मिल गया जो उसके लिए मुकरर किया गया था, और नूह को हमने एक तख्तों और कीलों वाली पर उठा लिया जो हमारी हिफाजत में चलती रही। ये हमने इसलिए किया कि हम उसकी खातिर बदला लें जिसकी नाकदरी की गई, और इस सरगुजश्त को हमने इबरत की एक निशानी बनाकर छोड़ दिया। फिर है कोई इबरत हासिल करने वाला? सो देख लो कैसा था मेरा अजाब और कैसी थी मेरी तंबी। हमने इस कुरान को याद दहानी के लिए नहायत मौजू बना दिया है, फिर क्या है कोई याद दहानी हासिल करने वाला। इसी तरह आद ने जुटलाया तो देख लो कि कैसा था मेरा अजाब और कैसी थी मेरी तंबी। हमने एक पहम नहूसत के दिन उन पर बादे तुंद मुसल्लत कर दी जो लोगों को इस तरह उखाड़ फेंकती थी जैसे वो उखड़ी हुई खजूरों के तने हों। सो देख लो कि कैसा था मेरा अजाब और कैसी थी मेरी तंबी। हमने इस कुरान को याद दहानी के लिए नहायत मौजू बना दिया है, फिर क्या है कोई याद दहानी हासिल करने वाला। समूद ने भी इस तंबी को जुटला दिया और कहने लगे, क्या हम अपने ही अंदर के एक अकेले आदमी की पैरवी करेंगे? इसके बानी तो ये हैं कि हम फिलवाके गुमराही में पड़े और जहन्नम में गए। क्या हम में से इसी पर याद दहानी नाजिल हुई है? नहीं, बल्कि ये परले दर्जे का झूठा और बरखुद गलत है। अच्छा, ये कल ही जान लेंगे कि कौन परले दर्जे का झूठा और बरखुद गलत है। हम ऊपनी को इनके लिए आजमाइश बनाकर भेजने वाले हैं, सो इनको देखते रहो और सब्र करो, और इन्हें बता दो कि पानी इनमें और ऊंटनी में बांट दिया गया है, अब हर एक अपनी बारी के दिन आएगा। इस पर उन्होंने अपने सरदार से फरियाद की, चुनाचे वो बड़ा और उसने ऊंटनी की कोंचें काट दीं। फिर देख लो कि कैसा था मेरा अजाब, कैसी थी मेरी तंबी। हमने एक ही डांट उन पर भेजी और वो बाड़े वाले की रोंदी हुई बाड़ की तरह चूरा होकर रह गए। हमने इस कुरान को याद दहानी के लिए नहायत मौजू बना दिया है, फिर क्या है कोई याद दहानी हासिल करने वाला। कौम लूत ने भी तंबीह को जुटला दिया, हमने उन पर पत्थर बरसाने वाली हवा मुसल्लत कर दी, सिर्फ लूत के घरवाले उससे महफूज रहे। हमने खास अपनी इनायत से उनको पिछली रात निकाल दिया। हम उन लोगों को इसी तरह सिला देते हैं जो शुक्र गुजार हैं। लूत ने यकीनन उनको हमारी पकड़ से खबरदार किया था, मगर वो उसकी तंबीह में हुज्जतें निकालते रहे और उसके दर पे हुए कि अपने मेहमानों से हाथ उठा ले, तो हमने उनकी आंखें मूंद दी कि चखो अब मेरे अजाब और मेरी तंबीह का मजा। फिर हुआ ये कि सुबह सवेरे एक ऐसे अजाब ने उनको आ ही लिया जिसने आकर डेरे डाल दिए। लो चखो अब मेरे अजाब और मेरी तंबीह का मजा। हमने इस कुरान को याद दहानी के लिए नहायत मौजू बना दिया है, फिर क्या है कोई याद दहानी हासिल करने वाला। यही तंबीह फिरौन के लोगों के पास आई, उन्होंने भी हमारी तमाम निशानियों को जुटला दिया, तो हमने उन्हें पकड़ा जिस तरह कोई जबरदस्त और बड़ी कुव्वत वाला पकड़ता है। ये तमाम बातें बयान करने के बाद, ये दास्तान सुनाने के बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुखातबीन यानी कुरैश को अब बताया है, कुरैश के लोगों फिर तुम्हारे ये मुनकरीन क्या उनसे कुछ बेहतर हैं, या सहीफों में तुम्हारे लिए कोई माफी लिखी हुई है? क्या इनका जोम है कि हम ऐसा जथा हैं जो मुकाबला कर लेगा? सुन लो, इनका ये जथा अनकरीब शिकस्त खा जाएगा और ये पीठ फेर कर भाग रहे हैं। ये गोया वो अजाब और उस अजाब की दास्तान है जिसके बारे में मैंने अर्ज किया कि वो रसूलों की कौमों पर आता रहा है। ये अजाब है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर खत्म नबूवत के बाद इसका दरवाज़ा हमेशा के लिए बंद हो गया। यानी ये अजाब जब आता था नेकोकारों को पहले अलग किया जाता था, बदकारों को अलग किया जाता था, ईमान वालों को अलग किया जाता था, मुनकरीन को अलग किया जाता था, खुदा के सामने तवाज़ों के साथ झुकने वाले अलग हो जाते थे और मुतकब्बिरीन और मुतमर्रदीन और सरकशी के साथ खड़े होने वाले अलग हो जाते थे। और फिर ये शान के साथ आता था जैसे कि मैंने इसकी तस्वीर सूरह कमर से आपके सामने रखी।
ला इलाहा इल्लल्लाह।